SBS हिंदी।
ऑस्ट्रेलिया में आबादी आमतौर पर उम्र दराज हो रही है, बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एज्ड केयर सेक्टर में काम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। सच तो ये है कि अब भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों की भारी कमी है और पूरा उद्योग अस्थायी आप्रवासियों पर निर्भर है। अब केंद्र सरकार इस क्षेत्र में हालत सुधारने की बात कर रही है, लेकिन जो बात की जा रही है क्या वो काफी है? रेना सरम्पाइट की रिपोर्ट विवेक आसरी की आवाज में। न्यूकासल की फ्रोंडिथा एज्ड केयर फैसिलिटी में काम करती हैं डेस्पिना जोंटुरिडो। वो दो भाषाएं बोल सकती हैं, इसलिए उनकी अहमियत बढ़ जाती है। 50 पार कर चुकी डेस्पिना इसी साल ऑस्ट्रेलिया आई हैं एक विशेष वीजा के तहत जो उन्हें इस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। दरअसल सरकार कुछ क्षेत्रों में स्किल्ड वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए ये विशेष वीजा देती है। डेस्पिना को ग्रीक भाषी बुजुर्गों की देखभाल के लिए ये विशेष वीजा मिला।
I was looking for a job and I sent my resume to Frontida in Melbourne and they replied to me and that was the start. So they talked me about the labor agreement and it sounds to me good so as to move in Australia.
जो लोग इस तरह से ऑस्ट्रेलिया आते हैं उन्हें शुरुआत में टेम्परेरी स्किल्स शॉर्टेज वीजा दिया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में उनके एम्प्लॉयर उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन एज्ड केयर क्षेत्र में ज्यादातर विदेशी कामगार स्थायी वीजा नहीं पा सकते क्योंकि इस काम को सेमी स्किल्ड माना जाता है। प्रोडक्टिविटी कमीशन का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया को 2050 में आज से 3 गुना ज्यादा एज्ड केयर वर्कर्स की जरूरत होगी। आज भी ये क्षेत्र लोगों की कमी से जूझ रहा है, इसलिए इसकी निर्भरता अस्थायी आप्रवासियों पर है। 2011 में एज्ड केयर में काम करने के लिए 33% लोग विदेशी थे। 2016 में ये संख्या बढ़कर 37% हो चुकी है। माइग्रेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि अस्थायी होना लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है, इस कारण वे संगठित नहीं हो पाते और खराब हालात और कम तनख्वाह पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एडिलेड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जोआना होव लेबर माइग्रेशन में एक जानी मानी विशेषज्ञ हैं। वो कहती हैं,
By relying on a revolving door of temporary migrant workers, there is no incentive for the aged care industry to improve wages and conditions. And we see that abroad, we also see it in Australia.
सरकार ने अस्थायी वीजा पर लोगों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए बुलाने के वास्ते अलग अलग तरह की पेशकश की हैं, जैसे पैसिफिक लेबर स्कीम के तहत देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए 3 साल का अस्थायी वीजा मिल सकता है। इसके अलावा डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन अग्रीमेंट या डामा के तहत भी एशिया से बड़ी संख्या में लोगों को वीजा दिया जा रहा है। एज केयर में काम करने के लिए अब पार्ट टाइम काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों पर निर्भरता बढ़ी है। इस वक्त क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 70% लोग इसी तबके से आते हैं।
For migrant workers working in aged care, I think better recognition in terms of their ability to raise concerns and not be fearful of being removed from that position and also this country. I think the Aged Care Royal Commission needs to seriously consider a serious amount of money going in aged care, not $1.5 billion, it's more probably along the line of $5 billion, and then ensuring that the people who actually care for our elderly are actually cared for themselves.
रॉयल कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार ने कुछ खास समस्याओं को हल करने के लिए करीब $500 million खर्च करने का वादा किया है, लेकिन इन समस्याओं में कर्मचारियों की कमी शामिल नहीं है। माइग्रेशन लॉ एक्सपर्ट जोआना होव कहती हैं कि अस्थायी आप्रवासी अपने करियर पर निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उन्हें ऐसा करने नहीं देती।
The government needs to make sure that the pipeline for aged care jobs comes from young Australians who are attracted to this industry, who the industry works with to retain and skill up over time. And that's the best thing for older people needing aged care. It's the best thing for our workforce as well.
Aged and Community Services Australia की प्रमुख पैट स्पैरो कहती हैं कि दोनों रणनीतियों पर एक साथ काम करना होगा। यानी ज्यादा लोग भी चाहिए और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी देनी होंगी।
We in aged care we need more workers, but we also need to be able to pay them better. They do incredibly important work, that's not recognised. It's a largely female workforce, so the issues around some of the gender pay gap and the value of work comes to the fore as well, so we absolutely need to address that. But having migrant workers, as I said, reflecting the Australian community and making sure that people can speak in their own language is really important as people age.
स्पैरो कहती हैं कि पर्सनल केयर वर्कर्स जैसे पेशों को स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट से जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्थायी वीजा मिल सके। पर्सनल केयर के लिए कोई ट्रेनिंग फिलहाल अनिवार्य नहीं है, हालांकि ज्यादातर इम्प्लॉयज लेवल 3 सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कर्मचारियों को भाषा, संस्कृति और ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के बारे में और ज्यादा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। Health Services Union के जेरार्ड हेज कहते हैं,
There's a diverse range of aged care recipients in this country, and I think any extra training that could go towards migrants being able to deliver quality aged care is fantastic.
Federal Aged Care Minister Richard Colbeck कहते हैं कि बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाइयों की बेहतर देखभाल के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं अहम हैं। वो केंद्र सरकार की एज्ड केयर वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी का जिक्र करते हैं, जिसके तहत लोगों को इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोलबेक कहते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। रेना सरम्पाइट की रिपोर्ट, विवेक आसरी की आवाज में।
आपका समुदाय, आपकी बातें, SBS हिंदी।
आपके विचार हमें बताए, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।